नमस्कार भारत, 15 अप्रैल सोमवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। चुनाव प्रचार में आपत्तिजनक बयानों की भरमार, हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने राहुल गांधी के लिए किया गाली का इस्तेमाल।
एक आदमी ने मैं कहा ये सच है सच लिखा, मेरे को बोलने में भी मैं कहा भारी लग रहा है, लेकिन ये देखो लोगों ने कैसे लिखा। जब आदमी दूसरे को ऐसे बोलेगा तो फिर लोगों को सुनना भी पड़ेगा। फिर
सुनवाएंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से खास बातचीत।
ऋण माफी कर दिया, 25 रुपए क्विंटल में धान खरीदी कर लिया, घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली बिल आधा कर दिया, आदिवासियों के जो जमीन थी उन्हें वापस कर दिया।
जानेंगे बिहार में शादी के नाम पर क्यों होती है मानव तस्करी।
उनकी जो ये सोच है कि बेटी एक बोझ है, उसका फायदा यही स्लीपर सेल जो पूरे सीमांचल में एक्टिव रहते हैं, ये सभी फैमिली को टारगेट करते हैं।
सुनेंगे खेल और खिलाड़ी उसत की डायरी भी, लेकिन सबसे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। भारत की मुख्य विपक्षी पार्टियों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय पेपर बैलेट से चुनाव कराने की वकालत की है। देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और पहले चरण का मतदान संपन्न भी हो चुका है। विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम मशीन की विश्वसनीयता को लेकर अपनी चिंता जताई है। हालांकि चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करते हुए विश्वास जताया है कि इन मशीनों के साथ किसी भी सूरत में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। 11 अप्रैल को पहले दौर के मतदान के दौरान आंध्र प्रदेश के कुछ मशीनों में खराबी की बात सामने आई थी, जिसके बाद से विपक्ष की ओर से ईवीएम मशीन को लेकर संदेह जताया गया था। चुनाव आयोग का कहना है कि कुछ मशीनों में खराबी तो जरूर आई थी, लेकिन उन सभी मशीनों को नई और सही मशीनों के साथ बदल दिया गया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समकक्ष दक्षिण कोरियाई नेता को संबोधित करते हुए कहा है कि वे उत्तर कोरियाई नेता के साथ तीसरे दौर की शीर्ष वार्ता करने को लेकर इच्छुक हैं। व्हाइट हाउस में दक्षिण कोरियाई नेता मून जे इन के साथ बातचीत शुरू होने से पहले ट्रंप ने जोर देते हुए कहा कि फरवरी महीने में उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ वार्ता विफल भले हो गई हो, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि परमाणु निरस्त्रीकरण पर समझौता संभव है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा,
Great progress has been made and a great relationship has been made in North Korea too. Kim Jong-un has been
हम हमारे रिश्तों में बहुत आगे तक आए हैं और हमने एक बेहतर रिश्ता बनाया है। किम जोंग उन वास्तव में उन लोगों में से हैं जिन्हें मैं बहुत अच्छी तरह से और सम्मान के साथ जानता हूं, और मुझे विश्वास है कि समय के साथ बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। सूडान की राजधानी खार्तूम में प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि देश में लोकतंत्र की स्थापना की जाए, वरना वे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने आर्मी मुख्यालय के बाहर रात गुजारते हुए प्रदर्शन जारी रखा। एक ओर जहां तख्ता पलट के बाद देश में कर्फ्यू की स्थिति बनी हुई है, वहीं प्रदर्शनकारी भी अपनी जगहों पर जमे हुए हैं। प्रदर्शन में शामिल एक महिला ने कहा, हम अपने घरों से इसलिए बाहर निकल कर आए हैं ताकि परिस्थितियां बदल सके, ताकि उमर अल बशीर की जगह कोई बेहतर शख्स सत्ता संभाल सके। लेकिन जब तक इस बात की घोषणा की गई कि देश में सैन्य सत्ता स्थापित की जाएगी, हम निराश हो गए। हमें लगा कि कुछ भी तो नहीं बदला। 4 महीने की हमारी यात्रा विफल रही, जो लोग मरे उनकी मौत बेकार गई। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फिनलैंड में रविवार को हुए आम चुनाव में देश की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आगे चल रही है। ज्यादातर वोटों की गिनती हो चुकी है और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को विजयी माना जा रहा है। ऐसा हुआ तो एंटी रिमे संभव है कि देश के पहले वामपंथी प्रधानमंत्री बने। इक्वाडोर के राष्ट्रपति लेनिन मोरेनो ने विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे की राजनीतिक शरण को रद्द करने के अपने फैसले का बचाव किया है। जूलियन असांजे बीते 7 सालों से लंदन स्थित इक्वाडोर के दूतावास में शरण लिए हुए थे, लेकिन बीते गुरुवार को उन्हें दूतावास से निकाल दिया गया और ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एक समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में मोरेनो ने कहा कि असांजे दूतावास को जासूसी का अड्डा बनाने की कोशिश कर रहे थे और वो दूसरे देशों के मामलों में दखल दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ये फैसला किसी भी बाहरी दबाव की वजह से लिया नहीं गया है, वहीं असांजे के वकील ने उनका बचाव किया है। सीरिया के राष्ट्रीय मीडिया का कहना है कि देश के उत्तरी शहर अलेप्पो में हुए एक रॉकेट हमले में कम 11 लोगों की मौत हो गई है और करीब इतने ही लोग घायल भी हुए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इन हमलों के पीछे सरकार विरोधी चरमपंथी ताकतों का हाथ है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार में राजनेताओं के अजीबोगरीब बयान भी सामने आ रहे हैं। इन बयानों में कुछ तो बेहद आपत्तिजनक हैं। रामपुर में कल समाजवादी पार्टी की रैली में महागठबंधन के उम्मीदवार आजम खान ने इशारों इशारों में भाजपा उम्मीदवार जया प्रदा के लिए खाकी अंडरवियर शब्द का इस्तेमाल किया। भाजपा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि आयोग उनके इस बयान पर नोटिस भेजेगा। हालांकि आजम खान का कहना है कि उन्होंने इस बयान में किसी का नाम नहीं लिया है। वहीं कल हिमाचल प्रदेश के सोलन में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने सोशल मीडिया की एक टिप्पणी का जिक्र करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए एक गाली बोल दी। उन्होंने राहुल गांधी और उनके परिवार को जमानती बताते हुए कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर कैसे कह सकते हैं। बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौर से बातचीत में सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि उन्होंने तो सिर्फ सोशल मीडिया की टिप्पणी का जिक्र किया था। बीबीसी से उन्होंने क्या कहा, सुनिए।
वीडियो है जिसमें आपने कहा कि एक आपको कोई कमेंट पढ़ाया और जिसमें राहुल गांधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था जो आपने मंच से पढ़े, लेकिन क्या आपको लगता है कि मंच से इस तरह से पढ़ना, बेशक किसी और ने लिखा, क्या वो सही था?
नहीं नहीं, मैंने उसमें ये बोला कि जैसे आजकल मैं नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स इतनी लो लेवल पे चल गई है कि देश का जो एक पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट है और अपने आप को बोलता है कि मैं आने वाला प्राइम मिनिस्टर हूँ, वो इस देश के प्राइम मिनिस्टर को बोलता है कि चौकीदार चोर है। तो उसमें मैंने कहा जब ऐसा आदमी बोलता है तो हम लोग तो ऐसी चीज बोल भी नहीं सकते और ना बोलना चाहिए किसी को सोशल मीडिया के ऊपर। ऐसे जो व्यक्तिगत हस्तक्षेप नहीं, मैं कहा सोशल मीडिया का करना चाहिए, हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, कोई किसी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं कहा जब ऐसा बोलते हैं तो हमसे भी कई लोग ऐसे कट्टर लोग हैं जो ऐसे जिसको आप कह सकते हैं कि गुस्से में आ जाते हैं। एक आदमी ने मैं कहा ये सच है सच लिखा, मेरे को बोलने में भी मैं कहा भारी लगा, लेकिन ये देखो लोगों ने कैसे लिखा। जब आदमी दूसरे को ऐसे बोलेगा तो फिर लोगों को सुनना भी पड़ेगा, फिर
जी
तो सुनाते लेकिन, ही है, मैंने लेकिन, आदमी सुनाता है।
लेकिन प्रश्न ये है कि वो जो शब्द था जो गाली इस्तेमाल की थी, सोशल मीडिया पे तो बहुत चीजें लोग गलत लिखते हैं, सबके लिए लिखते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक मंच से आपका उसका पढ़ना वो ठीक था, क्या वो नैतिकता के लिहाज से कहें क्या वो ठीक था?
नहीं तो मैंने तो खुद ही बोला कि ये गलत है जो भी लिखते हैं। लेकिन मैंने कहा जब आप एक देश के प्रधानमंत्री को कोई एक पार्टी का लीडर मंच से जोर जोर से बुलाएगा कि चौकीदार, नीचे से भरकर बोलेंगे चोर है, तो मैंने कहा फिर लोग ये लिख रहे हैं जो कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग है, हमारा कार्यकर्ता कोई ऐसी बात ना करे।
जी जी, उसमें क्लिप में हम ये जो क्लिप है उसमें ये भी दिख रहा था कि आप कह रहे थे कि राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो उनको पढ़ने को दे दिया जाता है उसको पढ़ देते हैं, उनको पता नहीं चलता।
नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा बोला मैंने।
नहीं, आपने कहा था कि उनको कोई भी पर्ची देते हैं तो वो उसको पढ़ देते हैं लेकिन उसका वो समझते नहीं है। आपने मंच से वो शब्दों का इस्तेमाल तो किया, किसी और ने बेशक किया, लेकिन आपने पढ़े तो सही वो, लेकिन क्या ठीक था? आपको कभी लगता है कि वो मुझे नहीं पढ़ने चाहिए थे, बेशक कोई और लिख रहा हो? क्या एक जब नेता एक मंच में
प्रधानमंत्री को वो चोर बोल रहा तो हम कुछ भी ना बोल रहे।
हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के बयान की कांग्रेस ने निंदा करते हुए कानूनी कार्रवाई की बात कही है। बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौर ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर से बात की।
लोगों में बहुत ज्यादा रोष है और देश की संस्कृति की बात करने वाले ये तथाकथित लोग जो है अपनी हार को देखकर बौखला गए हैं और इतनी अश्लील भाषा का उपयोग कर रहे हैं। हमने डिसाइड किया है कि हम 11 बजे परसों पूरे प्रदेश में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, उनसे मांग करें कि देश की जनता से माफी मांगे और अपने प्रदेश अध्यक्ष को जो है तुरंत बर्खास्त करे। और दूसरा मैं देख रहा हूँ इसको, वी आर गोइंग टू फाइल FIR अगेंस्ट हिम और हम कानूनी वो भी ले रहे हैं उसमें।
आजम खान और हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष के इन दो बयानों के अलावा कल एक और बयान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का आया। कमलनाथ के करीबियों पर पिछले सप्ताह आयकर विभाग के छापों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली में उन्हें भ्रष्टनाथ बताया था। वहीं कल खंडवा में एक चुनावी रैली में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मोदी को जब पतलून भी पहननी नहीं आती थी उससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी देश की थल सेना, वायुसेना और नौसेना का निर्माण कर चुके थे। ये थे कुछ बयानवीर। अब इनके बाद रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का, जो एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सिटिंग सांसदों के टिकट काट दिए हैं। ऐसा करके क्या भाजपा छत्तीसगढ़ में अपनी खोई साख दोबारा हासिल कर पाएगी? बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और अब विपक्ष के नेता धर्मलाल कौशिक के सामने जब ये सवाल रखा तो उन्होंने क्या कहा, सुने।
पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अनुकूल परिस्थितियां हैं। इस चुनाव का जो मुख्य बंधु है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी को सब कुछ चाहते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री फिर बने। गरीबों के लिए जो योजनाएं बनाए गए, जो कार्य हुए हैं, उसका इम्पैक्ट उनके बीच में है और इसका लाभ छत्तीसगढ़ में भी मिलेगा। जहाँ तक नए चेहरों की बात है तो स्वाभाविक रूप से उसको लोगों के बीच में स्वीकारिता है। नए चेहरे का मतलब ये नहीं है कि अननोन पर्सन हैं, कोई सांसद रहे हैं इसके पहले, कोई जनप्रतिनिधि रहे हैं और उनकी कहीं ना कहीं समाज में पहचान है, क्षेत्र में पहचान है। आज उनके लिए कोई एंटी इनकम्बेसी नहीं है खास करके, और लोग ऐसे प्रत्याशियों को सब चाह भी रहे हैं। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो हम अपेक्षा किए हैं, निश्चित रूप से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे उसमें छत्तीसगढ़ का एक बड़ा योगदान होगा। हमारे जनप्रतिनिधि जीत के जाएंगे, लोकसभा के हमारे प्रत्याशी जो हैं सांसद बन के यहाँ से जाएंगे।
ये थे छत्तीसगढ़ के भाजपा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक। वो जहां अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, वहीं भाजपा को हटाकर सत्ता में आए छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दावा है कि उनकी सरकार अपने वादों को पूरा कर रही है और इसका लाभ उन्हें लोकसभा चुनाव में मिलेगा। भूपेश बघेल से बात की बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने।
ऋण माफी कर दिया, 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी कर लिया, घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली बिल आधा कर दिया, आदिवासियों की जो जमीन थी हमने वापस कर दिया। इससे लोगों का विश्वास बढ़ा है, उसका कारण यही है कि हमने जो कहा वो किया।
आपने इतनी महत्वाकांक्षी योजनाओं का अनाउंसमेंट किया विधानसभा के चुनाव में भी, लोकसभा के चुनाव में भी, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ट्रेजरी खाली हो गई, 500 करोड़ रुपया मात्र बचा है और 12,000 करोड़ का आपने लोन लिया है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 50,000 का कर्जा छोड़ा है तो ये कहाँ खर्चा किया पहले बता लें। हम जो खर्चा कर रहे हैं वो तो सीधा दिख रहा है ना, यदि हमने लोन लिया है तो उसको चुकाने हमारी क्षमता भी है।
लेकिन उसका पैसा आएगा कहाँ से?
कुल हमारे पास व्यवस्था है, तभी तो हमने कर रहे हैं। अब अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करूँ बहुत लंबा हो जाएगा।
यहाँ छत्तीसगढ़ का नाम आता है तो बिना नक्सल समस्या के वो पूरा नहीं होता, तो ये समस्या कितनी बड़ी चैलेंज है, क्या समाधान हो सकते हैं?
ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है और बहुत विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है और हम लोग इसमें काम भी कर रहे हैं और बात करके किसी निष्कर्ष में पहुँच के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये समस्या आसानी से हल होने वाली नहीं है और जब तक के विश्वास लोगों का नहीं जीतेंगे तब तक नहीं होगा। और विश्वास जीतने की दिशा में हमने काम करना शुरू कर दिया, जैसे आदिवासी जमीन वापस करना।
10,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका अडानी के प्रोजेक्ट के लिए मिला, तो ये आप तो विरोध करते आ रहे थे जो कोल ब्लॉक जो आवंटित किया गया पावर प्लांट को राजस्थान के, जिसका एक्चुअली जो अडानी पावर के अंडर में आता है, ये एक आरोप आपके ऊपर लग रहा है।
ये तो ऐसा बता रहे हैं जैसे मैंने किया, ये तो पिछले सरकार के द्वारा किया गया है। और दूसरी बात, ये तो सफेद झूठ है। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर किसको कहते हैं? वो तो साबित कर दे कोई, जो कहे मैं हार जाऊं।
ये आरोप लग रहा है कि जिन चीजों का आप विरोध करते थे, कुछ अपॉइंटमेंट्स भी ऐसी हुई हैं पुलिस के महकमे के ऊपर के लेवल पर जिसका सिविल सोसाइटीज विरोध करती आई, पत्रकार विरोध करते आए, और फिर जो है आपकी सरकार आते ही फिर वो उनको अपॉइंटमेंट मिल गया और उस इम्पोर्टेंट पोजीशन में आ गए।
कल्लूरी सबसे विश्वसनीय आदमी नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ के उनसे मुलाकात की। वो विश्वसनीय आदमी है रमन सिंह का, तो हमने कहा भाई रमन सिंह के जो नान घोटाला है उसकी जांच सबसे विश्वसनीय अधिकारी को ही दे दिया जाए और उसको कहीं कहीं रखना पड़ेगा मुझे।
लोकसभा चुनाव में जीत और छत्तीसगढ़ में अपनी बेहतर कार्यशैली का दावा करते ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
बढ़ते हैं आगे। बिहार में सीमांचल के 3 जिलों में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 18 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सीमांचल के अधिकतर इलाके ऐसे हैं जहां शादी के नाम पर मानव तस्करी आम बात है, लेकिन चुनावों में ये मानव तस्करी कभी मुद्दा नहीं बनती है। सुनिए कटिहार से हमारी सहयोगी सीटू तिवारी की एक खास रिपोर्ट।
अपना गाँव में अपना क्षेत्र में शादी कर दे, अपना बेटी की जिंदगी देख के आज जैसे हम जी रहे हैं माँ बाप के घर में, माँ बाप का ताना, भाभी का ताना, गांव समाज का ताना, हर चीज का ताना मिलता है। अपना घर नहीं है तो तब न रहते हैं।
गुस्से से भरी राबिया का गला रुंध गया था। जिंदगी के फ्लैशबैक में जमा उसका दर्द मैंने कुरेद दिया था। 3 बच्चों की मां राबिया की शादी किस साल हुई, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई, उसे नहीं मालूम। बस इतना मालूम है कि उसके पति का घर किसी जनाना अस्पताल के पास था। राबिया को उसकी मौसी ने शादी के नाम पर दलाल को बेच दिया था।
वहाँ मारता था, पीटता था, वो छत पे से गिट्टी फेंकता था, माटी उठा के देता था, शरीर पे कुल्ली करके देता था, खाने में माटी मिला देता था। बच्चों का हीटर का तार हम खोल के रख देते तो वो एक तार खोल देता था, सोचेगा घुरक के जाएगा, चिपक जाएगा, और बीड़ी से जलाता था।
राबिया के घर से कुछ किलोमीटर दूर रहने वाली सोनम भी पति के यहाँ से भाग आई। बिन माँ बाप की इस बच्ची का सौदा पड़ोसियों ने किया था। दर्द की इस कश्ती पर सवार 26 साल की आरती भी है। मानसिक तौर पर बीमार इस लड़की के माथे पर जख्म के बहुत गहरे निशान हैं। उसकी शादी के लिए 3 दलाल आए थे। आरती की माँ बताती हैं,
एक औरत और दूसरा थी, 3 ठो आया वहाँ से, लड़का बढ़िया है, फलना है, कर लीजिए घर में आगे कर।
राबिया, सोनम और आरती जैसी तमाम पीड़िताओं को नहीं मालूम कि उत्तर प्रदेश में उनकी शादी कहाँ हुई थी। बिहार में ब्राइड ट्रैफिकिंग यानी झूठी शादी करके मानव तस्करी के मामले आम है, खास तौर पर सीमांचल यानी पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया जिले के ग्रामीण हिस्सों में, जहां गरीबी, प्राकृतिक आपदा और लड़की की शादी से जुड़े खर्चों के चलते लड़कियों को शादी के नाम पर बेच दिया जाता है। बीते 16 साल से इलाके में ट्रैफिकिंग पर काम कर रही शिल्पी बताती हैं,
उनकी जो ये सोच है कि बेटी एक बोझ है, उसका फायदा यही स्लीपर सेल जो पूरे सीमांचल में एक्टिव रहते हैं, रिश्तेदारों, पड़ोसी, दोस्तों के नाम पर ये सभी फैमिली को टारगेट करते हैं।
अपराध अनुसंधान विभाग के अपर पुलिस महानिदेशक विनय कुमार कहते हैं,
बहुत सारे इस तरह के गैंग्स हैं जो उनको प्रलोभन देकर के यहाँ पे पैसे लेकर के आते हैं और यहाँ से बच्चियों को खरीद करके ले जाते हैं, और जो बच्चियों के पेरेंट्स हैं वो एग्रीड हो जाते हैं पैसे के लालच में।
बिहार का लिंगानुपात 918 है जबकि सीमांचल का 927। यही वजह है कि जिन राज्यों में लिंगानुपात कम है उनके लिए सीमांचल की लड़कियां आसान शिकार हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इकोरैप नाम के पब्लिकेशन में मार्च 2019 में छपी रिपोर्ट के मुताबिक बिहार मानव विकास सूचकांकों में सबसे नीचे है, लेकिन इतनी भयावह स्थिति में भी ट्रैफिकिंग कभी चुनावी मुद्दा नहीं बनता। कटिहार के ही एक गांव में एक चबूतरे पर किशोरी समूह की लड़कियां जुटी हैं, जिसमें रीता भी है। वो जब 8वीं में पढ़ती थी तब किसी गईसा देवी नाम की दलाल ने उसकी जोर जबरदस्ती से शादी करवा दी। रीता भाग आई और फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। अब वो 10वीं में पढ़ती है। अच्छी बात यह है कि सीमांचल के इलाके में रीता जैसी कई लड़कियों ने इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन में पास की है। कटिहार से सीतू तिवारी, BBC।
अब जान लेते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबारों में आज क्या कुछ खास है। अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भूमिका राय जी। भूमिका बताएं
जी। शाहिद, चुनावी माहौल चल रहा है तो शुरुआत चुनावी खबरों से ही करेंगे।
सारे अखबारों के पहले पन्ने सब चुनावी खबरों से
जी,
पटे
बिल्कुल
रहते हैं।
चुनावी खबरों से और चुनावी बयानों से पटे रहते हैं, और कहाँ कौन सी रैली होगी ये पूर्व सूचना दी जाती रहती है। एक RTI डाली गई थी जिसमें ये पता चला है कि पार्टियों को जो चंदा दिया जाता है वो उसका सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ से आता है। तो ये अखबार पंजाब केसरी में छापा है कि पार्टियों को 99% जो चंदा है वो महंगे बॉन्ड से मिलता है, यानी सिर्फ 1% जो है वो बॉन्ड से इतर मिल रहा है। इसके अलावा एक हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर छापी है कि पहले दौर का जो है मतदान हो चुका है, बावजूद इसके आम आदमी पार्टी जो है वो अभी भी उम्मीद बनाए हुए है कि कांग्रेस उसके साथ गठबंधन कर लेगी, लेकिन कांग्रेस हर बार की तरह इस बार भी पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है और लगता नहीं है कि दोनों के बीच कोई गठबंधन हो पाएगा। जबकि अरविंद केजरीवाल इसे भाजपा विरोधी और देश हित में बताते हुए गठबंधन के लिए तैयारियां कर रहे हैं। इसके अलावा एक कर्नाटक से भी जुड़ी खबर है, वहां पर राहुल द्रविड़ जो
इंडियन टीम के पूर्व कप्तान, पूर्व क्रिकेटर,
हाँ, जिन्हें दीवार भी कहा जाता था, और वो वोटर लिस्ट में तो उनका नाम ही नहीं है, अम्बेसडर हैं लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है।
असल में ऐसा रहा, ये मैंने भी खबर देखी थी, इसमें कहा गया है कि उन्होंने अपना पता बदला था जिसकी वजह से उनकी वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ पाया था। उसके अलावा एक बहुत दिलचस्प तस्वीर हर जगह छपी हुई है भूमिका, वो है धर्मपाजी यानी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की, और हेमा मालिनी मथुरा से BJP की उम्मीदवार हैं। कल वो प्रचार कर रहे थे, इस पर दैनिक भास्कर ने एक हेडिंग लगाई है, जरा पढ़िए बताइए क्या लिखा
जी
है?
हेमा के प्रचार में बोले धर्मेंद्र, वोट नहीं दिया तो टंकी पर चढ़ जाऊंगा। और टंकी से हमारे श्रोता जो है उन्हें याद ही आ गया होगा शोले फिल्म का वो मशहूर डायलॉग।
लेकिन इस दौरान धर्मेंद्र ने एक बहुत दिलचस्प भी बात कही, वो प्रचार के दौरान कहने लगे कि देश में इस वक्त भाईचारे के लिए, उन्होंने कहा कि एक
सांप्रदायिक माहौल के बीच एक दोस्ती बनाए रखने की जरूरत है, सारे लोगों को एक साथ आने की जरूरत है और एकता बनाए रखने की जरूरत है।
जी, मैं इसी में आपकी बात में, एक बात, बीजू जनता दल की एक प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि हम भले ही चुनाव में लड़ें लेकिन एक दूसरे पर लांछन लगाना ये गलत है, हमें मिल करके देश हित के लिए काम करना चाहिए। प्रमिला बिश्नोई नाम है उनका। चुनावों की खबर एक और है कि छत्तीसगढ़ के एक गांव में रफाल जो है वो मुद्दा बना हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि रफाल राहुल गांधी ने तो कहा नहीं, लेकिन ये रफाल वो मुद्दा नहीं है, दरअसल एक गांव का नाम राफेल है। तो इस गांव में जो है, जो आसपास के गांव वाले हैं, इस गांव के लोगों को ताने दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। एक दुर्घटना से जुड़ी खबर है, टिकटॉक वीडियो बहुत ही मशहूर हो रखा है इस, हाँ, टिकटॉक ऐप के जिस पे वीडियो बनाते हैं उसके चलते एक युवक ने खुद को गोली मारी, एक्सीडेंटली वो गोली लग गई और युवक की मौत हो गई। ये दिल्ली की घटना है। तो ये थी आज तमाम अखबारों की सुर्खियां।
बिल्कुल, इस तरीके के स्टंट करना बहुत जानलेवा हो सकता है। अखबारों की समीक्षा के लिए धन्यवाद भूमिका। बढ़ते हैं आगे। जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना को हाल ही में 100 साल पूरे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस घटना समेत स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाएं लोगों के जहन में कैसी हैं, इस पर नजर डाल रहे हैं पाकिस्तान से वसतुल्लाह खां इस हफ्ते की अपनी डायरी में।
क्या पाकिस्तान में जलियांवाला बाग की 100वीं बरसी मनाई गई? बिल्कुल मनाई गई। हमारे सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने 13 अप्रैल से एक दिन पहले अपने ट्विटर के जरिए ब्रिटेन से मांग की कि वो जलियांवाला बाग नरसंहार पे माफ़ी मांगे। बंगाल में अंग्रेज़ की गलत पॉलिसियों के कारण भूखमरी से 1940 के दशक में जो लाखों लोग मारे गए उस पे भी माफ़ी मांगे। और लाहौर से अंग्रेज़ों ने जो कोहिनूर हीरा चुराया था वो पाकिस्तान को वापस करे। अब आप 100% ये पूछेंगे कि भला जलियांवाला बाग, बंगाल के अकाल और कोहिनूर हीरे की चोरी का आपसी संबंध क्या है, और एक ही ट्वीट में ये तीनों विषय निपटाने की ऐसी क्या जल्दी थी। इस पर एक किस्सा सुन लें। एक साहब ने अपनी पत्नी के देहांत पे अपने ससुर जी को टेलीग्राम भेजा कि दौलत जहां का इंतकाल हो गया है, आप आएं तो अपने साथ पहलवान स्वीट्स की रेवड़ियों के 2 डब्बे भी ले आइएगा, वस्सलाम। उनके बेटे ने पूछा कि अब्बा, नाना जी से ऐसे मौके पर रेवड़ियों की फरमाइश ज़रूरी थी क्या? अब्बा ने कहा, बेटे मैंने एक ही टेलीग्राम में दोनों बातें इसलिए लिख दी ताकि पैसे बचें, खुद कमाओगे तो पता चलेगा। तो यूं समझिए कि हमारे सूचना मंत्री ने वक्त बचाने के लिए जलियांवाला बाग, बंगाल की भुखमरी और कोहिनूर हीरे को एक ही ट्वीट में निपटा दिया। अब अगर आप ये कहें कि भैया 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग के शहीदों की याद में कोई डाक टिकट भी छपा, प्रधानमंत्री ने कोई पैगाम दिया, पाकिस्तानी झंडे को शोक में झुकाया गया, अर्ज़ ये है कि हमें और भी ज़रूरी काम करने हैं, ऐसी आलतू फालतू बातों के लिए हमारे पास समय नहीं। क्या इतना काफ़ी नहीं कि जब जलियांवाला नरसंहार की खबर 100 वर्ष पहले लाहौर पहुंची तो पूरे लाहौर में उसी दिन हंगामा हो गया। जिन्ना साहब ने रोल्ट एक्ट के ख़िलाफ़ लेजिस्लेटिव काउंसिल से त्याग पत्र दे के धुआंधार बयान दिए। जलियांवाला बाग कत्लेआम के अगले ही रोज़ गुजरांवाला में गुस्से में भरे हिंदुस्तानियों की भीड़ भगाने के लिए ब्रिटिश इंडियन एयरफोर्स ने बमबारी भी की, पर हमें तो ये सब कुछ इतिहास में बताया ही नहीं गया। हमें तो ये समाचार भी कोई 15-20 वर्ष पहले ही पता चला कि भगत सिंह पाकिस्तान में पैदा हुआ था और यहीं उसे फांसी भी दी गई। अच्छा, हुआ होगा ऐसा तो पाकिस्तान में पैदा होने से कोई पाकिस्तानी थोड़ी हो जाता है। मनमोहन सिंह भी पाकिस्तान में ही पैदा हुए थे। मेरे बचपन में जो स्कूली इतिहास पढ़ाया जाता था उसमें गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, मंगल पांडे, मोहनजोदड़ो और तक्षशिला भी पाकिस्तानी सभ्यता का हिस्सा थे। मगर फिर एक दिन फैसला हुआ कि हिंदुस्तानी इतिहास मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होगा और विभाजन से होता हुआ मोहम्मद ज़ियाउल हक पे ख़त्म होगा। आइंदा सारे हीरो मध्य एशिया और मध्य पूर्व से आयातित होंगे। ऐसे में तो बुल्ले शाह, वारिस शाह और दुल्ला भट्टी की जगह भी मुश्किल से निकलती है, और आप फरमाइश कर रहे हैं कि भगत सिंह और जलियांवाला पाकिस्तानी बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता। रंजीत सिंह से भी बस इसलिए थोड़ा बहुत संबंध है कि उसकी राजधानी लाहौर थी और कोहिनूर हीरा उसकी पगड़ी में चमक रहा था जिसे अंग्रेज़ छीन के ले गए। मालूम नहीं हमारे सूचना मंत्री को भी ये बात मालूम है कि पाकिस्तान इस घटना के 100 वर्ष बाद पैदा हुआ, या उन्हें बस कोहिनूर हीरा ही याद है। चलो, कुछ तो याद है।
वसत उल्ला खां की डायरी आपको कैसी लगी हमें जरूर लिखें। और अब समय है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी का।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कल आईपीएल में दो मैच खेले गए, जहां पहले मैच में जीत के लिए 162 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हरा दिया। चेन्नई के लिए सुरेश रैना ने नाबाद 58 और रविंद्र जडेजा ने नाबाद 31 रन बनाए। दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 39 रन से पटखनी दी। जीत के लिए 156 रनों की तलाश में पूरी हैदराबादी टीम 18.5 ओवर में 116 रन पर सिमट गई। और अब समीक्षा। आ गई वो घड़ी जिसका सभी को इंतजार था कि अगले महीने 30 मई से इंग्लैंड में होने वाले 12वें विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए आज घोषित होने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के 15 खिलाड़ी कौन से होंगे।
द स्क्वाड इज विराट कोहली कैप्टन, रोहित शर्मा वाइस कैप्टन, शिखर धवन, एमएस धोनी विकेटकीपर, हार्दिक पांड्या।
कुछ इस अंदाज में जब आज एमएसके प्रसाद की अध्यक्षता वाली बीसीसीआई की चयन समिति आगामी विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान करेगी, तो काफी नाम तो पहले से ही तय माने जा रहे हैं, जैसे कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, महेंद्र सिंह धोनी, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल। हालांकि इनमें से कोई नाम कट भी सकता है, क्योंकि निर्णय तो चयन समिति का होगा और उसके फैसले कई बार हैरान भी करते रहे हैं, जैसे आर अश्विन और रविंद्र जडेजा कभी एक दिवसीय टीम के नियमित सदस्य थे, लेकिन बीसीसीआई ने इन्हें ऐसा आराम दिया कि इनकी जगह एक दो मैच खेलने वाले कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल पक्के हो गए। हालात यहां तक पहुंचे कि आज आर अश्विन का नाम संभावित 15 में नहीं है, तो रविंद्र जडेजा अपने हैरतअंगेज खेल के दम पर कम से कम दावेदारी में तो शामिल हो गए। क्रिकेट एक्सपर्ट अयास विमन कहते हैं,
रविंद्र जडेजा की वापसी ये बताते ही है कि क्या कुछ इंडियन टीम को चाहिए। एक तो ये है कि अल्टरनेटिव स्पिनर चाहिए, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं तो एज एन ऑलराउंडर आ सकते हैं।
वैसे सबसे बड़ी अगर मगर किंतु परंतु ऋषभ पंत को लेकर भी है। उन्हें जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक दिवसीय सीरीज में आराम दिया गया था, तब भी उनके विश्व कप में खेलने को लेकर सवाल उठे थे।
ऋषभ, द इंटेंसिटी ऑफ द सीरीज दैट वी आर प्लेइंग राइट नाउ, सो वी आफ्टर दिस सीरीज वी वांट टू कीप हिम फ्रेश, गिव हिम अ ब्रेक,
इट्स स्टिल अ चांस टू मेक द वर्ल्ड।
यस ऑफ कोर्स ही इज डेफिनेटली पार्ट ऑफ दिस।
एमएसके प्रसाद ने एक तरह से उनके नाम को हरी झंडी दी थी। उनका सामना दिनेश कार्तिक से है। अयाज बेमन भी ऋषभ पंत को ही प्रमुख दावेदार मानते हैं।
आपको थोड़ा बहुत यंगस्टर्स पे भी डिपेंड करना पड़ेगा और मेरे ख्याल से ऋषभ पंत जिस तरह से खेल रहे हैं, आप कह सकते हैं थोड़े रिस्की है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत वैल्यू लाते हैं, तो मैं उन्हें चुनूंगा।
लेकिन सबसे बड़ी पहेली, नंबर 4 पर कौन खेले, इसका हल भी अयाज बेमन के पास है।
मेरे ख्याल से विजय शंकर ने वो सब कुछ किया है जो न्यू कमर या नए एंट्रेंट को करना चाहिए, जब भी उन्हें मौका मिला है, तो मैं उन्हें चूज करूंगा।
पसंद अपनी अपनी, पर दुल्हन वही जो पिया मन भाई की तर्ज पर आखिरी 15 वो जो चयनकर्ता चुने। खैर, इसका फैसला भी आज हो जाएगा। नजर केएल राहुल पर भी रहेगी। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
वक्त हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति का, लेकिन उससे पहले चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। भारत की मुख्य विपक्षी पार्टियों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर संदेह जताया था, जिस पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करते हुए ये विश्वास जताया है कि इन मशीनों के साथ किसी भी सूरत में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ तीसरे दौर की शीर्ष वार्ता को लेकर इच्छुक हैं। सूडान की राजधानी खार्तूम में प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि जब तक देश में लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो जाएगी, वे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। फिनलैंड में रविवार को हुए आम चुनावों में देश की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आगे चल रही है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति लेनिन मोरेनो ने विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे की राजनीतिक शरण को रद्द करने के अपने फैसले का बचाव किया है। सीरिया की राष्ट्रीय मीडिया का कहना है कि देश के उत्तरी शहर अलेप्पो में हुए एक रॉकेट हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है और करीब इतने ही लोग घायल भी हुए हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक ताज़ा खबरों के लिए आएं हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com पर। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।